स्मार्ट कास्ट।
आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का।
खातिरजात, आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ और ये सेशन जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है उसको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, क्योंकि उन्होंने मुझे चुन लिया है एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने के लिए मैं जिनका मतलब जैसे मरने वाला फैन, डाई हार्ड फैन हूं। मेरे साथ आज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं द वन एंड द ओनली वन, मिस्टर पापॉन। ओ माय गॉड, मतलब ये वो फैन मोमेंट है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सवाल पूछूं या मैं आपको ये बताऊं कि एवरी टाइम व्हेन आई स्विच ऑन माय माइक, द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माय शो इज 95% योर्स। कोई ना कोई आपका गाना, चाहे वो बुलिया हो, चाहे वो GAQ हो, चाहे वो हम नवा हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो। बहुत कम लोगों ने ये गाना सुना है हार्ट ब्रेक, पर मेरे को दिल में बहुत अच्छा लगता है। आई लव दैट ट्रैक। कौन मेरा हो, तू जो मिला, मतलब जो भी आपके जितने भी आपके गाने हैं वो हम जरूर प्ले करते हैं, बिकॉज वो नाइट टाइम में ना ऐसा लगता है टेलर मेड सॉन्ग्स है। पापॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो बाउंस बैक भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू राहुल, मुझे जान के भी बहुत खुशी हुई कि आप जैसे बोल रहे हैं कि मेरे ही गाने आप काफी सुनते हैं, मेरे गाने भी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मेकिंग माय डे इन अ वे। शुक्रिया आपने मुझे चुना फीवर FM।
हाय हाय,
तो शुक्रिया, थैंक यू।
मैंने सुना है कि आप पहले आर्किटेक्ट के लिए आप एनरोल किया था आपने एंड आप आर्किटेक्ट के लिए पढ़ रहे थे and you became a singer. ये journey कैसी रही and how did this thing happen? ये transition कैसे हुआ? आप एक ऐसे singer बन गए, मतलब the most sought out of singer जिसके लिए एक बहुत different किस्म की आवाज है, जिन्हें पता है कि जिन्हें सभी music directors को पता है कि अगर इस texture का गाना है तो एक ही इंसान गा सकता है, वो है पापॉन। But आप imagine कर सकते हैं एक architect से एक singer वाला सफर, how did it happen?
आर्किटेक्ट तो बना ही नहीं एक्चुअली मैं, सब कुछ अधूरा सा रहा है जिंदगी में कुछ ना कुछ। जैसे कि आई वॉन्टेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट बचपन से। आई एक्चुअली स्कूल में भी आई वॉज मोर पॉपुलर फॉर मे बी माई पेंटिंग्स एंड आर्ट देन म्यूजिक, तो इसीलिए एक वो था कि आर्ट किसे कनेक्टेड है आर्किटेक्चर, तो मुझे लगा वो करूँगा। गया था दिल्ली, एक दो इंस्टीट्यूट में मिले जिसमें चाहा था उसमें नहीं हुआ, SPA में, एंड फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर वापस जाने वाला था, आसाम से आया था मैं दिल्ली। फिर लोगों ने कहा यही रुको, थोड़ा देखो दुनिया कैसी है, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा इंग्लिश ऑनर्स में ज्वाइन किया मैंने कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो करते कराते एक टाइम ऐसा आया कि समझ नहीं आया कि क्या करने वाला हूँ मैं, एंड मैं म्यूजिक फिर मैंने चुना क्योंकि मुझे लगा यही मैं शायद कर पाऊंगा।
अच्छा।
क्योंकि मेरे पिताजी मम्मी दोनों बड़े फनकार थे म्यूजिक के, और उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि म्यूजिक करूं, बट माहौल ऐसा बनाया, तालीम ऐसी दी कि शायद कहीं ना कहीं तैयार था, तो बाकी आगे बढ़ाना था मुझे, एंड उसके लिए समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे होता गया, शायद ये लिखा था। एंड आप जो कह रहे कि यहाँ तक पहुंच गया कि म्यूजिक डायरेक्टर जब अब एक टेक्सचर, एक तरह का अगर तासीर जो गले में या जो भी कह लीजिए जो चाहिए तो उनको जरूरत महसूस होती है, तो अभी आता है मुझे फोन कभी कभार एक दो गानों के लिए, अच्छे गाने मिले हैं। और वो भी ऐसा रहा है, वो उसका भी मतलब कहानी लंबी है कि शुरुआत में तो बहुत ही आपने देखा होगा अलग ही सा आवाज है और एक टाइम में काफी हाई ऊपर गाने वाला वो चल रहा था जब मैं आया था, तो काफी लो गाने से शुरू किया मैंने। एक गाना था जिए क्यों, मेरा बॉलीवुड सॉन्ग।
क्या गाना है सर।
हाँ जी, तो उसके बाद जो अब बन गया है कि ये टेक्सचर लोग पसंद करते हैं या इसके लिए मुझे बुलाया जाता है, वो एक दिन में नहीं बना है, वो मतलब बना है। वो पहले वो ही काफी मुश्किल था कि ये कैसा आवाज है, इसको कहाँ फिट होगा। तो
एक्चुअली
तो इस बिन सफर काफी सफर रहा है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए।
पैपन भाई, हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो बहुत लो चले जाते हैं, जब इंसान के अंदर वो सेल्फ डाउट आ जाता है, जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि यार उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं आता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आप बहुत डाउन चले गए थे एंड उसके बाद फिर आपने बाउंस बैक किया, और वो कैसे किया?
ऐसे तो पहला मेरा ऐसे रहे हैं, एक दो बार हुआ है, क्योंकि मैं वही है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी काफी करता था, तो उसका तो इंडिया में इतना ज्यादा वो नहीं है कि यू नो फाइनेंशियली कमर्शियली वायबल हो, वो ऐसे मोमेंट्स आए हैं। उसके बाद पिताजी, जब पिताजी गुजर गए थे तो तुरंत मुझे लगा अब तो क्या उनसे सीखना बाकी रह गया कुछ, मैं बहुत अचानक चले गए, क्या करूंगा। बट तुरंत मुझे याद है मैंने गुजरने के 20 दिन बाद मुझे यूएस में मेरा एक शो था और मुझे समझ नहीं आ रहा, बाल वाल शेव के लिए थे, वो सब चल रहा था, पर मुझे लगा उनका सपना था कि मैं यही करूं और खुश वो इसी में होंगे कि मैं अच्छा करूं, मैं गाना गाता रहा। तो मैंने वो 20 दिन में ही आई वेंट एंड डिड अ यूएस टूर एंड मतलब गाता गया बहुत बार, तो स्टेज में भी आंसू आ गए, मतलब क्या हो गया। फिर भी आई हैड टू परफॉर्म फॉर द ऑडियंस हु वर वेटिंग फॉर मे बी 8-9 महीने का पहले का बुकिंग होता है, तो फिर भी यू हैव टू लव स्माइल मेक द नाइट फॉर द ऑडियंस, उस तरह का एक टूर था। आई थिंक दैट वॉज ए टफ टूर फॉर मी। एंड फिर ऐसे हुए हैं, अभी कोविड में भी जैसे ऐसा लगा कि अब क्या होगा, और है नहीं, हम लोग तो जिस तरह के जिंदगी जीते हैं ऐसा नहीं है कि बड़ा बैंक बैलेंस है, ये है वो है, तो समझ नहीं आता कि अब कब तक चलेंगे ऐसे बिना लाइव शोज के, बिकॉज बिना लाइव शोज के देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर लाइव फॉर म्यूजिशियंस लाइक अस। लेकिन मैंने सोचा नहीं, सोच के जब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, इफ आई थिंक आई विल ओनली बी मेंटली मोर डिप्रेस्ड एंड उससे और चीजों में फैमिली में हर तरफ इफेक्ट होगा, तो मैंने सोचा सोचो मत, जब होगा होगा, कुछ तो लिखा होगा, I believe in destiny a bit. तो मैंने सोचा छोड़ो, अभी इस टाइम को पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना है, तो मैंने खूब गाने बनाए। इनफैक्ट मैंने गजल का एल्बम बना डाला, मैंने एक एसमीज एल्बम बना डाला, मैंने एक हिंदी एल्बम बना डाला, अभी रिलीज होना बाकी है, बहुत सारा म्यूजिक हो गया। तो वो भी चलता जा रहा है अभी भी, वही एक तरह का आई थिंक कहूंगा ये थोड़े थोड़े ऐसे बाउंस बैक्स होते हैं, जब मुश्किल होता है तो यू हैव टू बिकम टफ एंड यू हैव टू गेट गोइंग, अदरवाइज आप अगर सोचने लग जाए जो आपके हाथ में है नहीं, तो फिर आपके हाथ में जो है भी वो भी नहीं कर पाएंगे आप। इट्स बेटर यू नो पोस्टपोन द वरीज, वरीज कम यू नो वरीज विल ऑलवेज कम टू यू बट डोंट होल्ड ऑन टू देम, उनको आने दो, आते जाने दो, किसी चीज में व्यस्त हो जो कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, जो कुछ भी चीज हमेशा नहीं रहता है, तो डार्कनेस भी हमेशा नहीं। तो जब आएगा लाइट, जब आएगा नो रोशनी, जब आएगी, जब उजाला होगा, तब आप तैयार हो उसके लिए, आप अध्ययन करें, यूज योर टाइम टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कीप वर्किंग ऑन इट एंड आ जाएगा, आई थिंक नो यू हैव टू बी वर्किंग।
क्या बात है अपॉन भाई, आपने जो ये अभी बात बताई ना, आई जस्ट हैड गूस पंप्स। एंड जो आपने टूर का बात बताया, आपके पिताजी की बात बताई, इट वाज लाइक द वे यू बाउंस बैक, इट वाज रियली really amazing and बहुत मुश्किल होता है, and but जैसे आपने किया, I think आप ही कर सकते हैं। ये सवाल मेरे बहुत सारे हैं, बट मैं अपने ऑडियंस को पीछे नहीं रख सकता। दो ऑडियंस के सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। शिवम ने सवाल पूछा है कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन फोक म्यूजिक एंड बॉलीवुड, तो आप दोनों में से किसे ज्यादा प्रेफर करेंगे?
फोक म्यूजिक एंड बॉलीवुड। नहीं, यही होता है सवाल की मुश्किल होता है अगर आप पूछे कि आप, मेरे दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा, कौन से चुनना है, ये मुश्किल काम। ये सब सवाल होने भी नहीं चाहिए जिंदगी में, और नहीं होने चाहिए, अक्सर एंड होना चाहिए। कभी कभार और भी होना चाहिए, बट ज्यादातर एंड होना चाहिए। आई थिंक यस, अच्छा म्यूजिक होता है। मैं एक गाने को एक गाने के तरह लेता हूँ, कौन सा स्टाइल चल रहा है, कौन सा फील का है, कौन सा इंडस्ट्री का, ये सब सोचते रहने से आप गाने को लेके फिर कैसे सच्चा होंगे। तो इट शुड बी द सॉन्ग।
पापन भाई, बहुत सारे गाने हैं आपके जो मेरे फेवरेट हैं, बट मैं ऑब्वियसली मैं सारे नहीं बोल सकता आपको सुनाने को, आपका भी समय बहुत कीमती है। मुझे एक गाना बताइए जो आपके लिए बहुत कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा आपको मेंटली टायरिंग लगा उसे कंपोज या उसे लिखने में या गाने में। कौन सा एक गाना था जिसने आपका बहुत टाइम लिया और आपकी बहुत एनर्जी ली, बट जब वो बन के आया तो बहुत खूबसूरत था?
कहना तो मुश्किल है, सच में कहूँ तो एक्चुअली ऐसे बहुत गाने हुए, एक नहीं याद आ रहा है जिसमें आपने जो कहा वो होता है कि कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभार तुरंत बन जाता है। तो जब बन के आता है फाइनली, तो जो मजा आता है उसको यू कैन नॉट, वो बयान नहीं हो सकती, वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा एक गाना नहीं आ रहा, लेकिन आप कुछ एक फरमाइश एक कर दीजिए ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा।
देखिए मेरे दो फरमाइशें हैं, एक है हमनवा, वो मुझे इतना प्यारा लगता है, आई डोंट नो, मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ, मैं देखता नहीं सिर्फ सुनता हूँ, और मैं कहीं वादियों में पहुंच जाता हूँ कि वो कहीं किसी वादियों में शूट हो रहा है, जहाँ एक हीरो है हीरोइन है, वो एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हुए हैं और गा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि वो उसके लिए गा रहे हैं। मुझे वैसी एक इमेज, जिसे कहते हैं ना, एक इमेजिनरी फीलिंग, वो इमेजरी क्रिएट होती है उस गाने के साथ, उसकी एक, अगर आपके पास उसकी कोई गाने की स्टोरी हो और वो गाना।
So I will, मैं से शुरू करता हूँ कि गाने की कहानी है कि मिथुन कंपोज दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड ये जब गाना आया था मेरे पास, तो ऐसा था कि अलग ही उनका था, शायद उसका छवि था, मतलब ना डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट वे, थोड़ा अलग सा था, और मैंने जब गाया कुछ अलग ही बन गया। तो इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम, ही सच ए ग्रेट कंपोजर म्यूजिशियन, कि उन्होंने फिर बात किया डायरेक्टर से, सब कुछ, उन्होंने बोला कि जस्ट लेट मी कम बैक इन हाफ एन आवर, मतलब आप वेट करो। मुझे लगा पता नहीं गाना होगा नहीं होगा, गा तो लिया, पूरा गा भी लिया, देन इसे पूरा अलग हो गया, सॉरी गाना कुछ और सोचा था, तो बट वी हैव डिसाइडेड टू कीप इट, एंड हम सोचे अब उसको पिक्चर ही अलग तरह से करेंगे, बिकॉज जो निकल गया कुछ और निकल गया और बहुत ज्यादा अच्छा। तो वो था उसका, वो कहानी है उसकी, एंड मैं दो चार लाइन आपको सुना देता हूं। ऐ हमनवा मुझे अपना बना दे, सुखी पड़ी दिल की इस जमीन को भी गा दे, जरा हाथ बढ़ा दे, सुखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को बना दे, तू आवाज़ को मेरी आज ठहरा दे, हो सके तो थोड़ा प्यार जगा दे, सुखी बड़ी दिल के इस जमीन को भी जा दे।
क्या बात,
थैंक यू।
पापन भाई, आपने जैसे बताया योर बैंड आल्सो, जो बहुत मशहूर बैंड रहा है, इनफैक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी शुरुआत कैसे हुई एंड अभी वो बैंड इस वक्त अभी की स्टेटस देखें तो वो क्या है?
एक्चुअली शुरुआत हुई मेरी पहली अपनी जो आई थिंक प्रोफेशनल अगर देखा जाए म्यूजिक के वहां तो आई थिंक शुरुआत हुई असमीज एक एल्बम था मेरा जुना की राती मैंने बनाया था बनाने में 7 साल लगा तो मतलब घूमते घामते बनता गया कोई प्लान था नहीं जब लगा कि 8 गाने होंगे चलो एल्बम बनाए
जी जी
तो वहां से आसाम में थोड़ा सा नाम हुआ लोगों ने जाना फिर मैंने एक बैंड बनाया फिर मुझे लगा मैं दिल्ली में था आई वॉज वर्किंग विद मीडियल पंडित कर्ष काले ऑल दिस फ्रेंड्स तो मेरे एक दोस्त थे ब्रिन वो आए थे बाहर से ऑस्ट्रेलिया से सीख के कुछ इलेक्ट्रॉनिक ये सब साउंड मिक्सिंग इंजीनियरिंग तो मैंने सोचा चलो मिलके और मेरे कुछ आसाम के जो बैंड बॉयज थे उनको ले गया था ये सब मिलजुल के एक बैंड बना उसका नाम दिया हमने ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि ईस्ट इंडियन फोक हम ले जाना चाहते थे इन अ न्यू वे टू द वर्ल्ड वही किया वो चलता गया फिर वहां से जैसे कृष्णा गिटारिस्ट था उनको बॉलीवुड में बजाना था तब मेरा बॉलीवुड का ड्रीम नहीं था तो वो निकल गए एक एक करके बदलता गया तो अभी बैंड के एक दो मेंबर्स हैं बाकी काफी बदल गए तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा एज सच नहीं है बट उसके कुछ म्यूजिक हम बजाते हैं उस टाइम के मिक्स हो गया बॉलीवुड आ गया नए गाने बन गए गजल भी गा लेते हैं कुछ कभी कोई शोज में तो इट्स अ मिक्स बैंड नाउ एंड काफी हमारा शो देखेंगे आप तो काफी मिक्स होता है ये नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड या सिर्फ फोक होता है
क्या
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं और अपडेट्स चाहते हैं तो रीच आउट कीजिए ना हमें देखिए फीवर FM ऑफिशियल इज आवर हैंडल और HT स्मार्टकास्ट ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के हम FB पे हैं इंस्टा पे हैं ट्विटर पे हैं यूट्यूब पे हैं लिंक्डइन पे हैं क्लब हाउस पे हैं हर जगह मौजूद हैं तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से बाय बाय
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था Fever FM Production HT Smartcast